نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، آج بہت ہی خوبصورت سورت آل عمران ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسری سورت ہے مصحف کے اعتبار سے، مدنی سورت ہے. اس میں 200 آیات ہیں، 20 رکوعات ہیں. اس کا نام آل عمران، عمران کی فیملی. اور عمران کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام. اس صورت میں آپ ان کی فیملی کا ذکر پڑھیں گے، حضرت مریم کی والدہ حنہ کا بھی ذکر پڑھیں گے. تو اس صورت کا نام اس حوالے سے آل عمران ہے. اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت اس لحاظ سے ہے کہ یہ حدیث مسلم کی آپ سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ پاورفل سورہ ہے یہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. زہروین کو پڑھا کرو. زہروین مینس دو زہرا. زہرا کا معنی کیا ہے؟ صاف، روشن، چمکدار اور روشن کرنے والی چیز، خود بھی ویل لٹ ہے اور روشن بھی کرتی ہے. اور یہ اس کو زہرا کیوں کہا گیا؟ یہ ایک زہرا ہے اور البقرہ دوسری زہرا ہے، تو اس لیے دو زہرا ہو گئی، تو زہرا وین. ٹھیک ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے نا. تو اس سورہ کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا نام کہ یہ زہرا ہے. اور اس میں جو نور ہے، جو ہدایت ہے، اس کی وجہ سے، اور سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح نور اور ہدایت ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں کو زہروین کہا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہروین کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران کو. کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی. آپ سوچیں کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ کتنی پاورفل سورہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے آگے، تو قرآن کی سفارش مانی جائے گی. یہ اور سورہ بقرہ سمجھ لیں ٹوئنز ہیں. زہروین سے بھی آپ کو پتہ چل گیا، ویسے بھی بہت ساری سملیرٹیز ہیں دونوں سورہ. آپ دیکھ رہے ہوں گے دونوں سورہ ایک ہی طرح کے حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوئی ہیں، الف لام میم. اور دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی صفات بیان کی ہوئی ہیں. سورہ بقرہ میں قرآن کی ہدایت پر ایمان لانے والوں کی بات ہے. آل عمران میں ان میں قرآن پاک میں جو کجی کرتے ہیں، جو شوشے نکالتے ہیں، ان کی بات ہے. اور سورہ بقرہ میں تخلیق آدم کا بیان ہے، سورہ آل عمران میں تخلیق عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے. دونوں میں بھی سملیرٹی ہے نا، کیونکہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو دونوں کی تخلیق یعنی نارم سے ہٹ کے ہے. ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ ہے. سورہ بقرہ میں آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ لمبی ان کی جو باتیں آئی ہیں وہ سب پڑھی ہیں، جبکہ اس سورہ میں آپ دیکھیں گے عیسائیوں کے ساتھ بات کی گئی ہے. اور دونوں صورتوں کی جو اینڈنگ ہے وہ دعا کے ساتھ ہے. تو آپ اس سے بھی سملیرٹی دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مماثلت کیسے پائی جاتی ہے. اور دونوں کی میں جو اینڈ کی دعائیں ہیں نا، وہ بہت خوبصورت دعائیں ہیں، بہت زبردست دعائیں ہیں. तो इस तरह से आपने देखा ये चंद एक पॉइंट्स कि किस तरह ये इन दोनों सूरतों में क्या चीजें कॉमन आपको मिलेंगी। दूसरे, आपने पढ़ा पहले के सूरह बकरा में उम्मते मुस्लिमा की तश्कील की बात है कि कैसे ये उम्मते मुस्लिमा खड़ी होगी, किन चीजों पर अमल करेगी, कैसे इसने आगे काम करना है। आप इस सूरत में देखेंगे जो मेन आइडिया ना वो जम जाने का है कि स्टेडफास्टनेस। अलबकरा में करिकुलम आपको मिल गया ना कि ये है आपका करिकुलम उम्मते मुस्लिमा का, ये उनका मनहज है, इस पे इनको चलना है और दुनिया की लीडरशिप संभालनी है। लेकिन इस रास्ते में चैलेंजेस आएंगे तो तुमने जम जाना है, लोग तुम्हें वसवास का शिकार करेंगे, शकूक व शुभात डालेंगे और बहुत सारे और हर्डल्स आएंगे इस रास्ते में, लेकिन तुमने जम के चलना है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मोमिन की जो दो सिफात थी वो क्या थी, गैब पर ईमान और समयाना वाताना कहना। लास्ट सबक में हमने ये बात की थी और इस सूरत में आप शुरू में देखेंगे यही चीज के ऊपर के जो गैब पर ईमान है ना, इसमें लोग शकुको शुभात डालेंगे, तो आपने हिलना नहीं है। ठीक है। और दूसरा, इस सूरत के अंदर समयाना व अताना के ऊपर जो जम जाना है उसके ऊपर भी बात आएगी, क्योंकि ये सूरत दो मजामीन के गिर्द घूमती है, यानी दो किस्से समझ लें कि दो मशहूर वाकयात हैं जो इस सूरत में डिस्कस हुए हैं। एक वाकया मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन वो 1 आयत से लेके 120 आयत तक है, जिसमें कि नजरान के वक्त, जो नजरान का एक वफद आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बहस मुबाहसा किया था इस्लाम के बारे में, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातचीत फरमाई थी और उनको जो जो उनके साथ मुबाहसा हुआ था उसका जिक्र इस सूरत में, और तकरीबन 1 से 120 आयत तक सब समझ लें कि इसके गिर्द घूमता है। उसके बाद आप देखेंगे आयत 121 से लेकर आखिर तक, आप देखेंगे कि तकरीबन आखिर तक कि ओहद के वाकयात हैं, ओहद के बाद के जो वाकयात हैं, क्योंकि ओहद में मुसलमानों को बहुत बड़ा सेटबैक मिला था, और उसमें क्या हुआ था कि मुसलमानों को शिकस्त तो नहीं कह सकते मगर एक जहनी धचका भी लगा था, नुकसान भी हुआ था, और ऐसे वक्त के अंदर मुसलमानों को जो अल्लाह ताला ने तसल्ली तशफी फरमाई है उसका आप जिक्र देखेंगे। किस तरह जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है ना कोई बात, और कितने प्यारे तरीके से समझाती है, अल्लाह ताला ने इस तरह मुसलमानों को तसल्लियां दी हैं, तशफियां दी हैं, किस तरह अल्लाह ताला ने उनको ढारस बंधाई है, ये आप इस पार्ट में देखेंगे। और बहुत ही खूबसूरत ये भी है क्योंकि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे वाकयात आते हैं जिनमें हमें भी धचका लगता है, हमें सेटबैक मिलता है, और हम अपने लिए भी उससे बहुत बड़ी रहनुमाई ले सकते हैं। तो इसलिए वो हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है। पहले हिस्से के अंदर आपको मिलेगा किस तरह आपने अपने ईमान को शकुक व शुभात से पाक रखना है, कैसे आपने अपने ईमान की में जब लोग शकुक व शुभात डालेंगे, वसवास डालेंगे, तो किस तरह से आपने चलना है, वो सब आपको पहले हिस्से में, यानी अल्लाह की तौहीद के ऊपर बहुत ज्यादा जोर, क्योंकि जाहिर ईसाइयों का अकीदा ही तो खराब था, वो उसकी बेस के ऊपर ही तो आगे सारी खराबी है ना। तो अकीदा है जो है वो गैब पे ईमान पे मुश्तमिल है, और गैब पे ईमान को मुतजलजल नहीं होने दे रहा। अब सूरह फातिहा और सूरह बकरा और सूरह आले इमरान के अंदर क्या मुमासलत है। सूरह फातिहा में हमने पढ़ा एदिन सिरात अलमुस्तकीम सिरात अल्लदीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दौलीन, दो गरों की बात आई थी, एक मग़दूबी अलैहिम थे और दूसरे दौलीन थे। तो मग़दूब कौन थे, हम कहते हैं वो यहूद थे। तो यहूद की बात बनी इसराइल की बात आ चुकी है कहां पे? सूरह बकरा में। अब किसकी बात है? अब ईसाइयों की बात है। ठीक है, तो आपको उस वक्त भी बताया था कि मग़दूब कौन है, जो इल्म पा के और उसके बाद भटक गए। और दौलीन कौन है? जो इल्म नहीं रखते थे, इल्म के बगैर थे और वो गुमराह हो गए। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क है। एक किस्सा आपको बता देती हूँ जो इसकी बैकग्राउंड में, चूंकि हम शुरू की आयात देखेंगे तो उस तनाजुर में एक रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजरान के नसारा का 60 आदमियों का एक काफिला आया, जिनमें 14 सरदार थे और उन 14 में से 3 शख्स बहुत मुअज्जज थे। तमाम इख्तियारात उनके कब्जे में थे और इन 3 में से एक आदमी अब्दुल मसीह ऐसा था कि उसकी राय सब पे मुकद्दम समझी जाती थी। दूसरा सरदार ईहम था और तीसरा शख्स जिसके इंतजाम में तमाम मदारिस वगैरह थे, उनके मदरसे थे, यानी सारे, बहुत बड़ा डेलीगेशन एक आया था। और आपको पता है डेलीगेशंस का साल कौन सा था, जिन्होंने सीरत पढ़ी भी है? 9 हिजरी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शुरू का पार्ट इस सूरह का उस वक्त का नाजिल हुआ है, ये जब वफद आया था तो यानी 9 हिजरी के करीब। और जो सेकेंड पार्ट है, जो उहद के बाद का नाजिल शुदा, वो यानी उहद के बाद यानी तकरीबन 4 हिजरी का टाइम है। तो इस तरह से 3 हिजरी या इस तरह वो है। तो वो आगे आयात आएंगी, ये जो हम पहली शुरू की आयात पढ़ेंगे, 32 आयात शुरू की, ये तमहीद है, यानी इंट्रोडक्शन एक तरह से, अल्लाह की सिफात के बारे में बातें हैं। और ये सारी आयात उतरी उस वक्त ही, लेकिन अगली 31 आयात में तो आप डायरेक्ट बात देखेंगे जो इन नसारा के साथ की गई। और उसके बाद का मैंने आपको बताया हिस्सा उहद का। तो चलते हैं दोबारा उस किस्से की तरफ कि वो तमाम मदारिस का इंचार्ज था तीसरा आदमी, उसका नाम बनू हारिसा था। तो उस आदमी की इतनी बड़ी यानी वैल्यू थी, उसने अपनी इतनी अपने अपना स्टेटस बनाया हुआ था अपने अमाल की वजह से, उसकी बड़ी इज्जत थी, यानी नसारा के बादशाह भी उसकी इज्जत और तकीर करते थे, उसकी खिदमत करते थे। तो अबू हारिसा जो था वो एक खच्चर पे सवार था, उसके पहलू में उसका भाई था किर्स बिन अल्तिमा। अबू हारिसा के खच्चर ने ठोकर खाई तो उसके भाई ने कहा, खराबी हो, अच्छे रसूल के पास जा रहे हैं। अबू हारसा ने कहा, खराबी तुझे हो। फिर्ज ने कहा, मुझे क्यों खराबी हो? अबू हारसा ने कहा, इसलिए कि जिनके पास जा रहे हैं वो बेशक अल्लाह के वही रसूल हैं जिनके हम मुंतजर थे। फिर्ज बिन अल्कमा ने कहा, फिर ईमान क्यों नहीं लाते? उसने कहा, अगर मैं ईमान ले आऊं तो जो तुम ये सब देख रहे हो ना, मेरी कौम जो मेरी इतनी इज्जत करती है, फिर कौन करेगा मेरी ये इज्जत और तकरीम? किर्ज कहता है कि इसकी ये बात सुन के मैं खामोश हो गया, और फिर ये किर्ज मुसलमान हो गए थे और उन्होंने इस हिकायत को बयान किया। दूसरा, इब्ने इसहाक में एक और वाक्य आता है कि जब नसारा का ग्रोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कब हाजिर हुआ था? 9 हिजरी में। ठीक है, इसको याद रखना था कि आपको पता चले कि देखिए जो सूरतों में वाकयात है ना, वो ऐसे नहीं है कि जैसे तारीख चल रही थी तो जो पहले हुआ वो पहले या जो बाद में हुआ। अल्लाह ताला ने जिस तरह से अः वही की उसके मुताबिक आयात को रखा गया है, और इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। तो जब नसारा का गुरु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। ये लोग बहुत उम्दा लिबास पहने हुए थे, जिन सहाबा ने उनको देखा था वो कहते हैं, इनके बाद हमने कोई ऐसा ग्रोह देखा ही नहीं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ के बैठे थे। अब उनकी भी नमाज का वक्त हो गया तो मस्जिद में ही वो एक तरफ नमाज पढ़ने लगे। आपने फरमाया, पढ़ने दो और उनको कुछ ना कहो। उन्होंने मशरिक की तरफ मुंह करके इबादत की। जब उनके उलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की तो आपने फरमाया, तुम इस्लाम ले आओ। वो कहने लगे, हम तो पहले ही मुसलमान हैं। आपने फरमाया, तुम मुसलमान नहीं हो, इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा, बेशक हम तो मुसलमान हैं। आपने फरमाया, तुम झूठ बोलते हो, तुम ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा बताते हो, सलीब की पूजा करते हो, सुअर को खाते हो, ये बातें तुम्हें इस्लाम इख्तियार करने से रोके में। वो बोले, ऐ मोहम्मद, अच्छा ये बताओ ईसा का बाप कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की ये आयात आप पर उतारी, जो 80 से जायद तकरीबन आयात बयान की जाती हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी, जैसे मैंने आपको बताया 1 से 120 तक इसमें आपको इन बारे में बात मालूम होगी। तो देखते हैं सूरा को, आयत नंबर 1 से पहले लफ्जी तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तआत। अल्लाहु ला इलाहा, नहीं कोई इलाह। एक बात याद रखिएगा, जब भी ला के बाद जो इसम आए और वो फतहा के साथ हो, जबर के साथ हो, तो लाए नफी जिन्स हो जाता है, यानी पूरी जिन्स की नफी कर दी कि कोई किसी किस्म का भी ला नहीं है, इलाहू नहीं है, इलाहा है। ठीक है, तो ला इलाहा में ये पता चल गया कि किसी किस्म का भी कोई माबूद नहीं, कोई और इबादत के लायक कोई भी नहीं है। ठीक है, इल्लाहू मगर हुआ वही, वही कौन? हुआ की जमीर किस तरफ जा रही है? अल्लाह की तरफ। अल हय अल कय्यूम, जो जिंदा है और जो कायम है और कायम रखने वाला है। नज़ला, उसने नाजिल की, अलई का आप पर, अल किताब किताब, बिल हक साथ हक के, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली है, लीमा वास्ते उसके जो, बैना दरमियान, यदई ही, यदईन था दोनों हाथों के, नून गिर गया क्योंकि आगे ये प्रोनाउन लगा, जो इसके सामने है, इसके दोनों हाथों के आगे मतलब क्या, इसके सामने है यानी जो इससे पहले है। वह अनजल तौरात वल इंजील, और उसने नाजिल की तौरात और इंजील, मिन कबलू इससे पहले, हुदन हिदायत, लिन्नास लिए लोगों के, वह अनजला और उसने नाजिल की, अलफुरकान फुरकान को, फुरकान किससे है? फर्क करने वाला, फर्क से है ना, फारोक से। इन्नल्लज़ीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बी आयातिल्लाह साथ अल्लाह की आयात के, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए शदीद अज़ाब है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अज़ीज़ुन ग़ालिब है, ज़ुल इंतकाम इंतकाम लेने वाला है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यख्फा, नहीं पोशीदा, नहीं छुपी भी, खफी से है ना, अलैहि इस पर, शैउन कोई चीज, फिल अर्द जमीन में, वला फिस समा और ना आसमान।